यहोशू की पुस्तक उसका पहले अध्याय पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यहोशू उसका पहला अध्याय और पहले पद से लेकर के 9 पद तक, जैसे मैंने कहा चिर परिचित स्थल है, कई बार हमने सुना है, प्रचार किया है। मैं और आप एक यात्री और मुसाफिर हैं और हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कल रात में बोल रहा था, कुछ है जिन्होंने 30 साल, कुछ है जिन्होंने 40 साल, 50 साल, 60 साल, कुछ ऐसे सालों को अपनी यात्रा में पूरा किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहोशू की पुस्तक भी कुछ इसी तरह की बात को हमारे सिखाती है। और जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं, पहले 9 पद में उसका मुख्य विषय यात्रा की तैयारी। और इन पहले 3 पदों में, 9 पदों में हम 3 बातों को विशेष रीति देखना चाहेंगे। निर्देश है, प्रोत्साहन है, प्रतिज्ञा है। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे हटना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। जब यहोशू की पुस्तक में आते हैं तो यहोशू की पुस्तक कहां से आरंभ होती है? यद्यपि हम यहोशू को यहां से देख रहे हैं, लेकिन जो इसराइलियों की कहानी है, इसराइलियों की कहानी हम निर्गमन की पुस्तक से देखते हैं। जब निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं किस प्रकार से ये लोग सताए जा रहे थे, दुखी थे, पीड़ित थे, अर्थात मिस्र की गुलामी में थे, तो ये कराह उठे और परमेश्वर ने इनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और परमेश्वर ने इनकी सहायता की कि मिस्र से निकल करके वह आगे बढ़े। अब एक कनान में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद होगा आपको, जब ये मिस्र से निकाले जा रहे थे बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंतिम जो बात थी वो बात ये थी कि मेमने का लहू बहाया गया और वो लहू चौखटों पर लगाया गया और उस लहू के चिन्ह के द्वारा ये इसराइल लोगों ने वहां से मिस्र की गुलामी से या शत्रु की अधीनता से छुटकारा प्राप्त किया और वह आगे बढ़े। और जब मैं और आज आप अपने जीवन के बारे में देखते हैं तो वास्तव यही है कि मैं और आप भी एक दिन उसी प्रकार की मिस्र की गुलामी में थे। मिस्र संसार को और पाप को प्रकट करता है, हम उसी की गुलामी में थे, उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पापी थे ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर स्थिति पर आए और उन्होंने अपने लहू को क्रूस पर बहाया और वो लहू जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनके जीवन में उस लहू की छाप लगी और उन्होंने उस गुलामी से, पाप से, मिस की बंधुआई से जो पाप और संसार को प्रकट करता है उससे छुटकारा पा करके वे ठीक इसराइल की तरह एक यात्रा में शामिल हो गए। और मैं और आप भी एक कनान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। सो जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर रीति से इन बातों को हम अपने जीवन के बारे में देख सकते हैं। अभी ये उस स्थान में पहुंचे नहीं है और जो मुख्यतः यहोशू की पुस्तक का जो मुख्य थीम है वो थीम शब्द एक शब्द है, वह है विश्राम, रेस्ट, कि परमेश्वर अब इसराइलियों को उससे निकाल करके आगे बढ़ाता हुआ उस नए स्थान में कनान में ले जा रहा है और वहां पर वो उनको विश्राम देगा। और एक विश्वासी की यात्रा भी इसी प्रकार से है, जिसके पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। मेरे प्रियो, हो सकता है शायद आज आप पहली बार इस चर्च में आए हैं, पहली बार आप संदेश सुन रहे हो, सुसमाचार सुन रहे हो, शायद हो सकता है आप बार बार आ रहे हो, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताते इस बात को, परमेश्वर की दृष्टि में सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है, अगर परमेश्वर की महिमा से रहित है तो परमेश्वर का वचन यह भी कहता है इसलिए जो प्राणी पाप करे वो निश्चय मर जाएगा, अर्थात पाप के कारण उसके ऊपर दंड की आज्ञा लग चुकी है। आप चाहे किसी भी प्रभु में से हैं, शायद आप अच्छे धर्म कर्म कर रहे हो, अपनी रीति विधियों को पालन कर रहे हो या बहुत कुछ खोज कर रहे हो, बहुत कुछ अब दान पुण्य कर रहे हो, जो कुछ भी आपको भला लग सकता था या जो कुछ भी आपको सिखाया गया था आप शायद वो करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे और आपके अपने स्वयं के धर्म कर्म के काम मुझे और आपको कभी भी छुटकारा नहीं दिला सकते। और इसलिए यह अवश्य था कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वो मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करें। और वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सबसे पहली बात, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा, तो शायद आप अभी तक उस मिस्र की आप गुलामी में हैं जो संसार और पाप को दर्शाता है और जहां वेदना है, पीड़ा है, सब कुछ है। लेकिन आपके लिए प्रभु ने अवसर दिया है कि ताकि आप उस यीशु को जाने और यीशु पर विश्वास करके उससे पाप से छुटकारा को प्राप्त कर सके। हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम अपने एक यात्री होकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे होकर बढ़ रहे हैं, तो मेरे और आपके लिए जब हम पहले अध्याय को में आते हैं, कुछ मैं पढ़ूंगा कुछ पदों को। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के पश्चात यहोवा ने नून के पुत्र और मूसा के सेवक यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा अब नहीं रहा, इसलिए अब उठ और इन सब लोगों के साथ तू इस यर्दन नदी के पार करके उस देश में प्रवेश कर जिसे मैं उन्हें अर्थात इसराइलियों को देता हूं। जैसा कि मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वो मैंने तुम्हें दे दिया है। करीब 70 बार यहोशू की पुस्तक में यह शब्द आया है, दिया है, दे दिया है, दे दिया जाएगा, देना देना देना, यहोशू की पुस्तक में। अर्थात परमेश्वर एक विशेष कार्य करने जा रहा है, उनको एक ऐसा स्थान देने जा रहा है जो स्थान विश्राम का स्थान है। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए ये एक विश्वासी के लिए आशा है कि हम एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जो विश्राम का स्थान है, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर मुझे और आपको दे दिया है। और तब आगे कहता है, जंगल में लबनोन से लेकर मानादी प्रांत तक हित्यों के सारे प्रदेश तथा सूर्यास्त की महानगर की सारी भूमि तुम्हारी होगी, तेरे जीवन के सामने ठहर नहीं सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना त्यागूंगा। निर्देश या आज्ञा समझिए, या बान और दृढ़ो, क्योंकि इन लोगों को तूने उस देश पर अधिकार, लोगों को इस देश पर अधिकार दिलाएगा जिसको इन्हें देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई है। जब हम इस बात को आगे पढ़ते हैं तो 7 और 8 पद पहले हम ठहरेंगे। 7 और 8 पद में परमेश्वर स्पष्ट रूप से यहोशू को कुछ निर्देश दे रहा है और यहोशू उस निर्देश को इसराइल तक पहुंचा रहा है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर आगे चल के देखें तो इसराइल लोग इस बात की वाचा बांधते हैं, सहमति प्रकट करते हैं कि हम इसका पालन करेंगे। लेकिन 7 और 8 पद में क्या लिखा है, जो निर्देश है वो ये कह रहा है, न केवल याबान और अत्यधिक दृढ़ों, मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहें, उनसे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं, जिससे जहां जहां तू जाए वहां वहां सफलता प्राप्त करे। व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसके लिखी हुई सब बातों को के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। परमेश्वर यहोशू को स्पष्ट निर्देश देता है, और निर्देश क्या है कि तुझे यह करना है। ठीक है, तू यात्रा में आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, ये सच है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम एक साल खत्म करके एक दूसरे साल में प्रवेश करने पाए और हम उसी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हम यात्रा में 1-2 कदम आगे बढ़े, अब फिर एक नया साल आ गया, प्रभु जीवन देगा अगर मुझे और आपको, तो हम शायद आगे बढ़ पाएंगे, हमें नहीं मालूम। आज सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, हमारा एक भाई रमेश, बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे साथ कई साल तक उसने जैन के साथ मिलकर के सेवा की, आज वो सुबह सुबह प्रभु के पास चला गया, उसकी यात्रा खत्म हो गई। कई दिन से वो बीमार थे, हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे, यहाँ भी प्रार्थना की गई उनकी, यात्रा उनकी खत्म हो गई। मुझे और आपको नहीं मालूम कि हमारी यात्रा कब खत्म हो जाए, लेकिन जब तक प्रभु ने मुझे और आपको जीवन दिया है, हम एक स्थान में जा रहे हैं, जैसे इसराइल लोग उस कनान में जा रहे थे, उसकी तैयारी में थे, मैं और आप भी उसी तरह से यात्री और मुसाफिर होकर आगे बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर उस यात्रा में बार बार मुझे और आपको समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, स्मरण दिलाना चाहता है, तुमको ये निर्देश दिए गए, इस निर्देश को ध्यान से देखो, इस पर ध्यान दो। और वो निर्देश क्या है? निर्देश ये है, जो आज्ञाएं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहना। ये नई बात नहीं थी, इसराइलियों को जैसे ही परमेश्वर निकालता है मिस्र से, 11 अध्याय से 12 अध्याय में देखते हैं वो आगे बढ़ते हैं, 15 अध्याय में जैसे वो आगे आते हैं, उनको पार करते हैं, लाल सागर पार करते हैं, उसी के बाद एकदम से परमेश्वर ठीक 15 अध्याय में यही बात उनसे कहता है, समय नहीं कि मैं उधर पलटूं, लेकिन उसी बेश 26 प्रतिशत उसी में यही बात कहता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान देना, रात दिन उसको पालन करने में चौकसी करना। क्या मतलब है मेरे प्रियो? हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था है। और हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बिना वचन का सम्मान करे, बिना वचन का आदर करे, वचन का सम्मान करना मतलब ही नहीं बाइबल को साफ करके एक ऊंचे स्थान पर रखने का मतलब नहीं है, या कपड़े पे लपेटने का मतलब नहीं है, यहां से गए बहुत कपड़े में लपेट कर रख दिया, पूरे दिन हम सम्मान कर रहे हैं, बाद में चले आए उसके बाद झाड़ फूट के लिए, वो नहीं मतलब है। प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन का स्थान मेरे और आपके जीवन में क्या है? पिछले हफ्ते भी इतवार को मैं जब आपके साथ वचन बांट रहा था, आपको ध्यान होगा, इसी बात को मैंने जोर दिया था कि कितना अधिक हमारे जीवन में कोई भी कार्य करते समय हम ये सोचते हैं क्या ये वचन के अनुसार सही है। हमारे बहाने हो सकते हैं, हम हर चीज में आर्गुमेंट दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या वचन के प्रकाश में सही है? और यहां पर परमेश्वर का वचन मुझे और बार बार आपको बार बार याद दिला रहा है, वो ये कह रहा है कि तू परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से कह रहा है। क्यों? क्योंकि भजनकार दाऊद कहता है भजन संहिता 119:105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। कितना अधिक परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में स्थान देता है। वचन कहता है, पौलुस ने कहा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसते दो। जब जवान लोगों का कैंप होता है, अक्सर मैं इस बात को स्मरण दिलाता हूं, यहां पर भी कई बार मैंने कलीसिया में इस बात को बोला कि वचन के साथ हमें क्या करना चाहिए, 6 बातें। परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है, पहली बात। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है रोमियों के 10:17 पद में, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, पहली चीज। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, साल में एक बार नहीं, कभी कदार नहीं, एक आदत बनानी है, वचन से प्रेम करना है। यह भोजन है, यह रोटी है, जिस प्रकार से शरीर बिना रोटी के जीवित नहीं रहता, उसी प्रकार से हमारी आत्मा बिना वचन के जीवित नहीं रह सकती। और इसलिए पढ़ना है, इसीलिए प्रकाश द्वारा उसके 1:3 में लिखा है, धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। न केवल वचन को हमें सुनना है, न केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, लेकिन वचन को मुखाग्र करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है। क्लूसियो 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। हमें याद करना है, लेकिन आदत बनानी है, आदत बनानी है परमेश्वर के वचन को मुखाग्र करने के लिए। न केवल हमें मुखाग्र करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें मनन करना है। भजन संहिता 1:2 में दाऊद कहता है, वो क्या ही धन है वो जो परमेश्वर के व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, रात दिन मनन करता है। मनन का मतलब ये, वो वचन सामने आते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, और उसके बाद फिर हम विचार करते रहे, ऐसा क्यों लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, इससे क्या अर्थ है, मेरे जीवन में क्या कार्य करता है, क्या कुछ मैंने उसको सोचना है, विचार करना है। यह है परमेश्वर के वचन का हमें अध्ययन करना है। पढ़ना और अध्ययन करने में फर्क है, पढ़ना और अध्ययन करने में फर्क है। एज्रा 7:10 में परमेश्वर का सेवक कहता है कि एज्रा की खूबी थी, क्या विशेषता थी, उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने में, परमेश्वर के वचन को पालन करने में मन लगाया। और तब अंतिम बात है परमेश्वर के वचन को पालन करना है। केवल हम अध्ययन कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, बहुत सारे पद हमें याद हों, लेकिन अगर हम पालन ना करें तो बेकार है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट कहता है, यूहन्ना उसका 12:48 पद में, और एक दिन अंतिम दिनों में एक दिन हमारा अध्याय करने वाला दोषी चराना तो वो परमेश्वर का वचन है जो उसके मुख से निकला है। समय वचन के लिए गंभीर होना है। और जब ये लोग यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, क्यों? ताकि वचन उनको दाएं और बाएं मुड़ने से उनकी संभाल सके, उनको पाप में गिरने से संभाल सके, समझौता के जीवन में जाने से संभाल सके, कठिन परिस्थितियों में जाने से संभाल सके। वो कठिन परिस्थिति जो अपने आप उगा दी जाती है। दूसरी तरह संसार में हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगे, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमें संभालता है, उसका वचन संभालता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों को हम खुद बना लेते हैं अपनी मूर्खता के कारण, वचन का सम्मान ना करने कारण, वचन को जानने ना कारण, और इसलिए हमें सचेत और सावधान रहना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में बसना है। और ये लोग आगे बढ़ रहे थे और उनको मालूम था, यहोशू जानता था कि क्या कुछ होगा, कितनी जल्दी ये लोग लालच में आ जाएंगे। थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, 6 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से नगर को नहीं जीत पाए, क्योंकि लालच उनके जीवन में आ गया। परमेश्वर का वचन बहुत ही सावधान करता रहा उनको, और बार बार यहोशू को उनको चिताना पड़ा। सो पहले ये निर्देश दिया है कि तू परमेश्वर के वचन के किस रीति से कैसे करना। और मेरे प्रियो, ये सच में वो कह रहा है कि उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं, जिससे जहां जहां तू जाएगा वहां सफलता प्राप्त करेगा। सफलता केवल बहुत बड़ा धन प्राप्त करने से मतलब नहीं है, बहुत बड़ी नौकरी मिलने से बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा मकान मिलने से बड़ा नहीं है, हमारी नौकरी में सक्सेस मिलने से मतलब नहीं है। सफलता हमारे आत्मिक जीवन परमेश्वर पापों पर, हम पाप पे परीक्षा पा करके विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम शत्रुओं को पहचानने लगते हैं और शत्रुओं पर विजय पाने लगते हैं, हम समझौते के जीवन से बच जाते हैं। परमेश्वर एक मसीह जीवन को मसीह यात्रा में सफलता में लेकर के आगे बढ़ने वाला परमेश्वर है। हम उन ऊंट कटारों को पहचान सकते हैं, उन गड्ढों को हम पहचान सकते हैं जहां हम आसानी से गिर जाएं, उन ऊंट कटारों को जो हमारे हमें बाधा का कारण बन जाए। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सफलता के साथ साथ हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए एक ऐसा सुंदर स्थान रखा हुआ है, वो अद्भुत स्थान है। आइए थोड़ा सा मैं उस स्थान पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। कितना सुंदर स्थान है जो विश्राम का स्थान है, प्रकाश वाक्य उसका 21वां अध्याय। ये स्थान जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, 21 अध्याय पहले 7 पद तक पढ़ रहा हूं मैं। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी ना रहा था। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वो ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को ये कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग रहेंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गईं। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। उसने उनसे कहा, लिख क्योंकि ये वचन विश्वसनीय है। मेरे प्रियो, आगे चल के कहता है, उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूं, जो प्यासा हो उसमें जीवन के जल के सोते से मुक्त पिएगा, जो जय प्राप्त करे वो इन बातों का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। कितना सुंदर बात है, कितना अद्भुत स्थान होगा। क्या उस स्थान में जाने के लिए मेरे और आपके अंदर एक लालसा उत्पन्न नहीं होती? क्या उस स्थान में जाने के लिए मेरे और आपके अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती? कितना अच्छा स्थान संसार में कहीं नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी कर लीजिए नहीं मिलेगा, जहां परमेश्वर मेरे और आपके साथ स्वयं उपस्थित होगा। वो विश्राम का एक सच्चा अच्छा स्थान है, और उस विश्राम के स्थान के लिए पाने के लिए अगर थोड़े समय तक, शायद 10 साल 20 साल 30 साल मुझे और आपको परिश्रम करना पड़े, उसके वचन के साथ चलना पड़े, तो कौन सी अनोखी बात है। क्या हमारे अंदर ये डिजायर है? क्या हमारे अंदर ये लालसा है? क्या अंदर हमारे लिए अभिलाषा है? हे प्रभु, और क्या हम उसे कहने तैयार हैं, प्रभु जी आप मेरी सहायता करिए ताकि मैं 2020 में आपके वचन को अपने जीवन में लेकर के दाएं और बाएं मैं नहीं मोड़ूंगा, उसको लेकर मैं आगे चल सकूं, ताकि आपकी दया और अनुग्रह में होकर मैं उस उत्तम स्थान में पहुंच सकूं जो आपने मेरे लिए विश्राम का स्थान तैयार किया है, जो अद्भुत है, सुंदर है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई और चीज नहीं है, कोई प्यास नहीं है, परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। कितना अद्भुत वो स्थान होगा। ये तो थोड़ी देर के लिए कनान में वैसे ही प्रवेश कर रहे थे, पर प्रभु और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जूठा, सर पर उठा ले गया, जाते समय कहा मैं फिर से आऊंगा। लोग कहने लगे जैसे उसको तुम जाते हो देख रहे हो वो फिर से आएगा ताकि मुझे और आपको ले जाए उस स्थान पर। तो उस स्थान में जाने के लिए क्या मेरे और आपके अंदर लालसा उत्पन्न होती है? क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप मेरी सहायता कीजिए, मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, पर मेरे अंदर ये लालसा है कि मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकूं, ताकि मैं उस स्थान पर पहुंच सकूं जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। क्या इस वर्ष में आपने नया समर्पण करेंगे, प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि इस वर्ष में मैं पिछले साल हारा, असफल हुआ, गिरा, चूका, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पर दया कीजिए, लेकिन इस वर्ष में आपकी सहायता से मैं इस कदम में आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी प्रभु सहायता कीजिए, मेरे जीवन को एक नई रीति से अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि मैं उस स्थान को देखना चाहता हूं, मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूं जहां प्रभु आपसे निवास करेंगे, जो हर एक प्रकार से पीड़ा से मुक्त होगा। कितना सुंदर स्थान है। और श्लोक कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे जिससे उतर न पाए। मेरे प्रियो, तब आगे चल के दूसरी बात में हम आगे जल्दी से पढ़ना चाहेंगे, कहना चाहता है प्रोत्साहन है, वो इनकरेज कर रहा है, ना केवल निर्देश दे रहा है लेकिन वो उत्साहित भी कर रहा है। वो कहता है छठे पद में याप बांध और दृढ़ हो जाओ, सातवें पद में केवल याप बांध और अत्यधिक दृढ़ हो, फिर नवे पद में आगे चलकर कहता है याप बांध और दृढ़ हो, ना डर और ना हताश हो। ना केवल वो मुझे और आपको निर्देश दे रहा है लेकिन मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहा है, मत डरना, मत घबराना। कई बार हम अपने छोटे बच्चों को उत्साहित करते हैं, उनको याद दिलाते हैं, जरा सा कोई अगर छोटा जानवर आ गया, कोई पिल्ला आ गया, कुछ बेटा मत डरना, तुम घबराओ नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ो, जाओ, कुछ नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, अरे वो तो हमारा प्रभु का प्रभु, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, कितना अधिक वो मुझे और आपको प्रोत्साहित कर सकता है। कहता मत डरना, बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, अभाव आ सकता है, बीमारी आ सकती है, मृत्यु आ सकती है, दुख आ सकता है, चिंताएं आ सकती हैं, समस्या आ सकती है, सब कुछ आ सकती है। मत डरना, या बांध, दृढ़ हो जा। क्यों? क्योंकि उसका वचन सच्चा है। मेरे प्रियो, वो प्रोत्साहन देता है मुझे 2020 में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है 2019 में आपके पास निराशाएं हुई, कठिनाइयां हुई, समस्याएं, चिंताएं आई, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन 2020 में परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है मत डर या बांध। हो सकता है मैं इस नए साल को शुरू करते हुए आपके सामने बहुत सारी चिंताएं हों, समस्याओं, अभाव, शायद नौकरी का अभाव, शायद घर की परिस्थिति हो। कल एक भाई हमारे बीच में शेयर करते हैं कि किस रीति 2019 में कितना उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा, और बार बार उनके सामने प्रश्न क्यों ऐसा हो रहा, लेकिन प्रभु ने उनको संभाला। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कल के बारे में, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डरना या बांध। वो प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। क्यों प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है? क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मैं और आप मूल्यवान हैं, मैं वो मुझसे और आपसे सबसे अधिक प्रेम करता है। क्या यह हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिए बालक को भूल जाए? हाँ यह हो सकता है, यह संभव है, लेकिन मैं तुझे ना भूलूंगा, ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और इसलिए कहता है या बन, दृढ़ हो जा। मेरे प्रियो, क्यों ना उस परमेश्वर की जय जयकार करें, क्यों ना उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो, ना केवल आपने निर्देश दिए हैं, ना केवल आप मुझसे आप चाहते हैं, लेकिन मुझे आप याद भी देते हैं, मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं, ताकि मैं आपकी ओर दृष्टि करते हुए मैं आगे बढ़ सकूं। आप मेरे हाथ को थामने वाले परमेश्वर हैं, आप मुझे संभालने परमेश्वर हैं, आप मेरे साथ बने रहने परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। तब उसके बाद आगे चल करके हम कुछ प्रतिज्ञाओं को देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। पांचवे पद में, तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा, उसी प्रकार तेरे साथ भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना त्यागूंगा, ना तुझे मैं धोखा दूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। नौ पद में फिर वो कहता है, क्योंकि जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। क्या मत्ती 28 में 20 में परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस स्वर्ग में जाने से, संसार से जाने से पहले, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले ये नहीं कहा, जाओ जातियों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो ना तो धोखा देगा ना छोड़ेगा। संसार छोड़ दे, लोग छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मित्र छोड़ दे, सब छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे जीवन की यात्रा में चलते हैं जहां हम सोचते हैं कौन अब हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। उसने मैं तुम्हें ना धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा। वो अद्भुत परमेश्वर है, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है। यही तो सबसे बड़ा आनंद है, यही तो सबसे बड़ी आशीष है। ये कौन अनुभव कर सकता है? वे जिन्होंने अपने पाप के क्षमा का अनुभव जिन्हें प्राप्त हुआ है। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, यदि आप तक को अभी तक ये निश्चय नहीं मिला कि आप उसके संतान बन चुके हैं, यदि आपको ये निश्चय नहीं मिला कि उसने आपके पापों को क्षमा किया है, तो ये वायदा आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन यदि आपने उसको स्वीकार किया है और आप जानते हैं वो आपका परमेश्वर है, वो आपका उद्धारकर्ता है, तो ये मेरे और आपके लिए है। मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, इस वर्ष में पहली जनवरी 2020 के पहले दिन से, पहली घड़ी से परमेश्वर का वचन मेरे और आपके साथ है। लेकिन ये सच है, मुझे और आपको उसके निर्देश का पालन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुझ जानेगा वे तुझ जाने जाएंगे। यदि मेरे और आपके हृदय में यह अभिलाषा है, यह इच्छा है कि हम परमेश्वर का सम्मान करें, परमेश्वर का आदर करें, उसके वचन का आदर करें, उसके वचन का सम्मान करें, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, मेरे प्रियो, वो उसकी प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए हाँ और आमीन के साथ है। और इसीलिए पौलुस कहता है, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर में हाँ और आमीन के साथ है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, इस पहले दिन आप अपने जीवन में क्या कहेंगे परमेश्वर से? केवल थोड़ी देर के ही उन हरियाली चीजों से संतुष्ट मत होइए। वो तो वो हरे पत्तों के समान हो सकती है जो थोड़ी देर में मुरझा भी सकती हैं, लेकिन उन चीजों के को देखिए जो आनंद की चीजें हैं, जिसमें होकर आप प्रभु की उपस्थिति में वास कर सके। यहां पर यहोशू ने इसराइल को तैयार कहता है, वो कहता है, क्या कहता है आठवें पद में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, हमेशा परमेश्वर का वचन आपके मुंह में बना रहे, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, दिन रात इसी पर ध्यान करते रहना। परमेश्वर की आज्ञाएं, प्रतिज्ञा, परमेश्वर की चेतावनियां, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का सुझाव, परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर का प्रोत्साहन, जो इन सारी चीजों में परमेश्वर के वचनों में हम पाते हैं, इन सब पर रात दिन ध्यान देना। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एक स्थल को निकाल करके देखिए, उसमें कौन सी आज्ञा है, कौन से निर्देश हैं, कौन सी प्रतिज्ञा है, कौन से प्रोत्साहन है, कौन से सुझाव हैं, उन पैसेज में उस स्थल में आप देखिए, और वो आपके जीवन को दृढ़ता प्रदान करेंगे। और आप परमेश्वर से मांगिए, प्रभु इसके पालन करने के लिए मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। वो कहता है ध्यान करते रहना। और तब उसके बाद तीसरी बात वो कहता है कि जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। आचरण करना है मेरा जीवन का चाल चलन, मेरे जीवन के कार्य, मेरे जीवन के निर्णय, मेरे जीवन के सब कुछ आचरण का न्याय। हमारा जीवन मुंह से आवाज तो बाद में निकलती है, लेकिन पहले चाल चलन लोग देखते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करें, काश हम जितने भी यहां पर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, मेरे और आपके लिए आज परमेश्वर का ये संदेश है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे चित्त से उतरने ना पाए। क्या हम कहेंगे प्रभु इस 2000 वर्ष में मैं एक नई रीत से आपके वचन को अपने हृदय में लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, ताकि आपको आदर मिल सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे।